ॐ अज्ञानदिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसि प्रेमभक्तिप्रदे देवि श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तु ते। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आपका दामोदर अष्टक के इस प्रवचन श्रृंखला में। तो कल हमने या पिछले दो दिन में हमने चर्चा की कि भगवान किस प्रकार से अपने लीलाओं से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और उनका लीला वैचित्र्य, या जैसे इस प्रार्थना में पहले में हमने देखा कि भगवान का तत्व क्या है, वो पहले श्लोक में उन्होंने वर्णन किया कि सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान ईश्वर है। उसके पश्चात उनकी लीलाएं कैसी है कि रुदंतम मुहूर्त नेत्रम युग्मं व्रजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। हालांकि नित्य आनंद में है फिर भी रो रहे, और अपने दोनों आंखों को मल मल के आंसू बहा रहे हैं। तो सोचिए, जिनका नाम लेने से व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है वो यहां पे रो रहे, जिनको अखिल रसामृतमर्पी सब सौंदर्य संग्रह विग्रह कहा जाता है वे यहां पे रो रहे। तो ऐसी नरवत लीला है जो भगवान कर रहे हैं, उसके बारे में कल हमने चर्चा की। तो आज के इस तीसरे श्लोक में भगवान का गुण विशेष बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष गुण है कि जिसके द्वारा वे अपने आपको अपने भक्तों का प्राण प्रिय बना देते हैं। तो आइए इस सुंदर गुण के बारे में आज हम चर्चा करें। तो इस तीसरे श्लोक में सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, इति दृक्स्वलीलाभिर् आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तं अख्यापयन्तं तदीयेषु तद्नेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वंदे। तो कल हमने देखा कि कल के श्लोक में वर्णन किया गया कि माता ने उनको बांध दिया, और किस प्रकार से बांधा, बांधने में क्या कठिनाई आई, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की, और अपने आचार्यों के उसके लिए उन्होंने जो टीकाएं दी उनके मत क्या है उसका हमने अच्छी तरह से विश्लेषण किया, विवेचन किया। तो आज हम देखेंगे कि अपनी तो अपनी जो भक्त वश्यता है, जो भक्तों के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, उस गुण के बारे में भगवान स्वयं यहां पे बताते हैं। सत्यव्रत मणि यहां पे कहते हैं, वे कहते हैं इति दृक्, जो इस प्रकार दामबंधादि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्यकाल सरोवर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्य संपूर्ण ज्ञान की भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूं ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूं। बोलते कि यहां पे सैकड़ों बार करते हैं प्रणाम, शतावृति वंदे, शतावृति वंदे यानी सैकड़ों बार। तो आइए सनातन गोस्वामी जी की जो इसके ऊपर सुंदर टीका है उसका हम उसको हम पढ़ते हैं। वे कहते हैं यहां पे गुण विशेषणात्, इस श्लोक में गुण विशेष द्वारा प्रार्थ्य वस्तु का उत्कर्ष विशेष कह रहे हैं। तो भगवान का जो गुण विशेष है उसके बारे में यहां पे चर्चा हो रही है। इस प्रकार भक्तवशता के द्वारा अथवा उस दामोदर लीला के द्वारा, दामोदर लीला जैसी परम मनोहरी अपनी अन्य असाधारणी बाल लीलाओं तथा क्रीड़ाओं के द्वारा गोकुल में रहने वाले सभी प्राणियों को जो आनंद रसमय गंभीर जलाशय विशेष में अतिशय सरोवर करते हैं उन ईश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार है। तो यहां पे स्वलीला भी पद में बताया गया कि लीला के द्वारा, और श्रीमद् भागवत में भी इसके बारे में वर्णन आता है। वहां पे कहते हैं गोपी भी स्तोभित नृत्य भगवान बालवत क्वचित उद्गयति क्वचित मुग्धस्तद्वशो दारु यंत्रवत बिभन्ति क्वचित अज्ञाप्तः पीठोकोन्माद पादुकम् बाहुक्षेपञ्च कुरुते स्वानां प्रीतिं समुद्वहन। वृंदावन में ये जो सुंदर बाल लीला भगवान कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? स्वानम प्रीतिम समुद्भवन, उनके लिए जो उनके भक्तों का प्रेम है उसको बढ़ाने के लिए। देखिए कौन कौन सी सुंदर लीलाएं करते हैं, इसका सुंदर वर्णन यहां पे किया है। कहते हैं कि कभी कभी गोपियां नृत्यत भगवान बालवत, सर्वशक्तिमान भगवान को गोपियां फुसलाने से साधारण बालक की भांति नाच नचवाती थी, और भगवान भी कभी कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने भी लगते उनके लिए। और कभी गोपियां कहती कि लाला तुम नृत्य करोगे तो हम तुम्हें लड्डू देंगे, और सारे ब्रह्मांड को एको बहुनाम यो विदधाति कामान, सब ब्रह्मांड के सब जीवों की इच्छा पूर्ण करने वाले व्यक्ति, उनको जो चाहिए वो प्रदान करने वाली व्यक्ति, यहां पे एक साधारण बालक की तरह गोपियां जब बोलती है लाला तू नाच ले मैं तुझे लड्डू देती हो तो नाचना चालू कर लेते, और अथवा जब गोपियां हाथों से ताली बजाकर उत्साह करती है तो यही अखिल ऐश्वर्य संपन्न भगवान होकर भी साधारण बालक की तरह मुग्ध होके नाचते हैं और गाते हैं। और यहां पे तो कहते हैं कि बिभर्ती क्वचित अज्ञाप्ता पीठकोन्माद पादुकम क्वचित मुग्ध त्वदवेशो दारु यंत्रवत, दारु यंत्र यानी कठपुतली। अरे इतने कभी कभी वशीभूत हो जाते हैं गोपियों के कि एक कठपुतली की तरह उनके हाथ के कठपुतली की तरह नाचना शुरू कर देते हैं, यानी सर्वथा उनके अधीन होते हैं। और कभी उनको आज्ञा मिलती है बिभर्ति क्वचित आज्ञाप्ता, कि कभी कभी उनको आज्ञा मिलती है, आज्ञाप्ता मैंने कि पीठकोन मान पादुकम, कि लाला जा पीठ उठा के लेके आ, यानी बैठने का जो आसन रहता है उसको पीठ कहते हैं, तो बोलते लाला जा पीठ लेके आ जा। मैया को मिलने के लिए कोई गोपी आती है घर पे तो उनको बैठने के लिए आसन देने के लिए लाला को बोलते हैं, लाला दौड़ के जाता है, और हालांकि वो पीठ उठाना उसके लिए कठिन होता है तो फिर ओ, 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 बच्चे जैसा थोड़ा नौटंकी भी कर लेते। और कभी कभी जब उनको बोला जाता है कि जा लाला खड़ा हो लेके आ, तो नंद बाबा के खड़ा हो अपने सिर पे उठा के लेके आते हैं। तो सोचिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर क्या रहे, अपने भक्तों के खड़ा हो अपने सर के मस्तक के ऊपर रख कर लेके आ रहे हैं। तो सोचिए जो लीलाएं हैं ये कितनी मधुर है। अपने भक्तों के वशीभूत होने का जो भगवान का गुण है उसका वर्णन इस श्लोक में किया है। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि गोपियों को आनंदित करने के लिए पहलवानों के भांति आ जाओ बलदाव जी के साथ दो हाथ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? तो यहां पे इस श्लोक में जो सुंदर वर्णन किया गया कि स्वाणाम प्रीति समुद्वहन। क्यों करते हैं सारा? क्योंकि उनके जो है तदीय उनकी प्रीति बढ़ाने के लिए। और जो स्वयं भगवत ऐश्वर्य परायण है वे अपना ऐश्वर्य भूल जाते हैं ब्रज में। और इसलिए कहा गया है कि दर्शम तद्विदाम लोके आत्मानो भृत्यवश्यता। तद्विदाम का अर्थ है तम भगवंतम विदंती तेषां तद्ज्ञान परा नाम। यानी श्री कृष्ण उन ज्ञान पर भक्तों के प्रति अपनी भृत्यवश्यता प्रदर्शित करते हुए बालोचित क्रीड़ाओं द्वारा व्रजवासियों को हर्ष उत्पन्न करवाते हैं। जैसे अन्यत्र पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान स्वयं कहते हैं मम भक्त विनोदार्थम करोमि विविधैहि क्रिया और विविधैहि लीला। कि मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मैं बहुत सारी लीलाएं करता हूं। तो आप सोचिए ये जो तदीय है, तदीयेषु तद्नेषु भक्तिर्जितत्वम्, उन तदीयों के द्वारा भगवान उनके भक्ति के द्वारा जितत्वम् उनके सामने पराजित हो जाते, उनके वशीभूत हो जाते। और वही भागवत में भी कहा गया है कि तद्विदाम भृत्य वश्यताम विदा। और इसीलिए सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मैं बार बार शतावृति वंदे, मैं सैकड़ों बार ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं जो अपने भक्तों के वशीभूत है। और यहां पे सत्यव्रत मुनि यह दिखाना चाह रहे हैं कि भक्तों के द्वारा अवश्य करने योग्य भक्ति का एक विशेष प्रकार वंदन ही मेरा प्रार्थनीय है, न कि ऐश्वर्य और ज्ञान आदि। आपके धन के कारण भगवान आपके प्रति आकर्षित नहीं होंगे, ना ही आपके ज्ञान के कारण भगवान आपके प्रकार आपके प्रति आकर्षित होंगे, क्योंकि दोनों भी चीजें भगवान से आती है। मत्ता सर्व प्रवर्तते, ये मुझसे ही सारा उत्पन्न होता है करके भगवान कहते हैं। तो भगवान की ये जो लीलाएं हैं ये एक अक्षय सरोवर के समान है और जिनमें सारे व्रजवासी डूब जाते हैं। ब्रजवासी यानी सारे पशु पक्षी गाय गोप गोपी ग्वाले सभी स्वच्छंद रूप से भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते और उसकी घोषणा भी करते, उनका गुणगान भी करते रहते। और किस लिए? भगवान लीलाएं करते हैं उनके भक्तों का आनंद देने के लिए और भक्त उन लीलाओं का गुणगान करते भगवान को आनंद देने। और भगवान की जो ब्रज लीला है, खास करके ये जो लीला बताई गई ये यहाँ पे दामोदर लीला, तो उसके पहले लाला बस थोड़े ही बड़े हो गए हैं और वो घर की दहली पर पार करना सीख रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि बलदाव जी के साथ वो घर के बाहर निकले और आंगन में ही कुछ कांटों के पीछे बहुत ही सुंदर लाल रंग के पुष्प थे। तो दोनों तो कांटों के बीच में से अंदर घुस गए, फूल भी ले लिया, लेकिन जब वापस आना चाह रहे थे तो निकलने का मार्ग बंद हो गया, कांटे सारे फिर एक दूसरे के ऊपर आ गए। अब बाहर कैसे आए? फिर क्या, एक छोटे बालक की तरह रोना शुरू कर दी, जोर जोर से रोने लगे। और रोने का शब्द सुनकर मैया दौड़ के आ गई और देखा अरे दोनों भी कांटों के बीच में फंस गए, तो मैया ने कांटे हटाई और लाला को लिया और अपना दूध पिलाना शुरू किया। तो लाला कभी कभी क्या कर देते थे, कोई नुकली चीज वहां पे पड़ी है जैसे कोई चाकू है कोई तलवार है तो लेके खड़े हो जाते थे, या तो कभी कभी बड़े बड़े सिंग वाले जो सांड रहते थे उनके सिंगों को पकड़ के झूल जाते थे, और कभी कभी मणि स्तंभ में अपनी प्रति छवि देखकर आश्चर्यचकित होकर उसी छवि के साथ वार्तालाप करते थे, यानी जो अपना प्रतिबिंब, क्योंकि नंद बाबा का जो महल था उस महल के सारे खंभे रत्नों जड़ित थे और रत्न ऐसे थे कि पूरे पारदर्शित थे, तो लाला कभी कभी उसमें अपने आप को निहार लेता था, अपना प्रतिबिंब देख लेता था और उसी से बातचीत करता था, जैसे छोटे बच्चों को मालूम नहीं होता ना कि वो फिर उससे ही बात करना शुरू कर दे। तो सोचो ऐसी सुंदर लीला है जो है वो देख के ब्रजवासियों की क्या हालत होती होगी। एक दिन हुआ क्या, भैया ने लाला को बोला लाला जाओ बछड़े को लेके आ जा, तो लाला गया बछड़े को खींच के लाए, ऐसे तसे जोर जबरदस्ती करके खींच खींच के लेके आ रहा था, लेके आया तो उतने में शीके पे उसने माखन देखा, तो लाला ने अपना बुद्धि का प्रयोग किया और वो बछड़े के ऊपर चढ़ गए और चढ़ के शीके के ऊपर का माखन ले लिया, और जैसे ही बछड़े को लगा कि वो थोड़ा सा मुक्त हो गया, बछड़ा भाग गया और लाला गिरने ही वाला था, तो उसने सीके को पकड़ लिया और लटक के झूलने लगा, और मैया दूर से देख के हंस रही है, बोले कितना बुद्धिमान और कितना करामती है मेरा बच्चा। फिर एक बार क्या हुआ, प्रातः काल में यशोदा मैया घर में श्री कृष्ण का दर्शन के लिए, एक्चुअली मैया के घर में भगवान का प्रातः में दर्शन करने के लिए गोपियों का जमघट हो जाता था, सारी गोपियां आती थी और कई गोपियां बोलती थी अरे देखो कन्हैया कितना शक्तिशाली है, कुछ कहती थी अरे बिल्कुल नहीं बलदाव अधिक शक्तिशाली है, तो अभी इसका निर्णय कैसे होगा, तो दोनों को परस्पर में मल्ल युद्ध करवाते थे और बोलते थे क्या जो जीतेगा उसे माखन का लोन मिल लगा, तो माखन का लोना देख के दोनों के मुंह में पानी आ जाता था और बस दोनों कुश्ती लड़ने लगते थे। जब कृष्ण जीते तो उनके पक्ष की गोपियां ताली बजाती थी, जब बलदाव जी जीते तो उनके पक्ष की गोपियां तालियां बजाती थी, और कभी कभी तो लड्डू का लोभ दिखा के बोलती थी लाला थोड़ा नृत्य करके दिखाओ तो मैं तुमको लाडू दूंगी, तो बस कन्हैया कमर पर हाथ रखकर ताथई 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 करके नाचने और बीच बीच में तान भी छेड़ देते आ। तो यहां पे ऐसे प्रतीत होता था कि ये जो गोपियां है ये श्री कृष्ण की सूत्रधार है, जैसे कठपुतलियों को जो नाच नचाता है उसको सूत्रधार कहते हैं, तो वैसे ही व्रज में लाला खुद होके कुछ लीलाएं नहीं करवाता बल्कि उसके द्वारा करवाई जाती थी लीलाएं, और कभी कभी मैया के पास गोपियां घर में मिलने के लिए आ जाती थी, तो मैया बोल देती थी जा लाला वो पीठा उठा के ला बैठने के लिए, तो लाला जाता और उसको देख के गोपियां और ब्रजवासी प्रसन्न हो जाते थे। आप सोचो जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को गेंद के भांति कनिष्ठ उंगली पर अनासायास उठा लिया था और वराह रूप में पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर रखा हुआ था, व्रज में वो पीठा नहीं उठा पा रहे, यही माधुर्यमयी नर्वत लीला है। इसलिए कहा गया है कृष्णेर जातक खेला सर्वोत्तम नरलीला, भगवान की जो नरलीला है वो सर्वोत्तम है क्योंकि उसमें एक माधुर्य है, सर्वनियंता है सर्वनियामक है, किंतु व्रजवासियों के नियंत्रण में है। सर्वशक्तिमान है, अघटित घटना पटी ऐसी है, किंतु व्रज में एक अबोध बालक है, अपनी मैया के लाल्य और पाल्य है, जो पूरी संसार का पालन करते हैं, वो यहां पे मैया के द्वारा लालित और पालित है। और एक आज्ञाकारी पुत्र के भांति बाबा की जो जूती है खड़ा हुआ है, अपने सर पर लेके आते हैं। तो आप सोचिए, और इसलिए यहां पे कहते हैं कि इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम। निमज्जय यानी क्या है? जैसे हम जल विहार करते हैं तो निमज्जन, पानी के ऊपर ऐसे ही मस्त तैरते रहते हैं। तो कहते हैं कि सारे ब्रजवासी जो है वे पूरी तरह से भगवान के इन सुंदर लीलाओं को देखकर उसका आनंद उठा रहे हैं। अभी इति दृक्स्व लीला, भी कैसी लीलाएं हैं? एक तो एक सुंदर लीला है भगवान की। एक मथुरा की फल वाली थी और उसको भगवान के दर्शन की बहुत बड़ी लालसा थी, क्योंकि मथुरा में रहकर भगवान का दर्शन पाना उनके लिए बहुत कठिन था, और मन में उसके इतनी उत्कंठता थी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने की। उसी उत्कंठा में वो मथुरा से ब्रज में आ गई। जब आई, लेकिन आती थी यार वास्तव में, लेकिन जब भी आती थी या तो कभी श्री कृष्ण सोते हुए होते थे, कभी मैया की गोद में होते थे, कभी सखाओं के साथ खेलने में व्यस्त होते थे, और कभी घर के भीतर ही रहते थे। बहुत चेष्टाएं की उन्होंने, लेकिन भगवान के उनको अच्छी तरह से दर्शन नहीं हो पाए। तो फल वाली ने सोचा कि आज मैं गोकुल आई हूं तो लाला के दर्शन लिए बिना जाऊंगी नहीं यहां से, ऐसी उत्कंठा उसके मन में थी। अगर ऐसी प्रखर उत्कंठा हो तो ही साधक भगवान को देख सकता है, और इसीलिए साधक को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि दिन रात, जैसे कि श्रीमन महाप्रभु ने, रूप गोस्वामी पाद ने जो हमें नियम दिए हैं, जो हमें भक्ति के अंग बताए हैं, उन अंगों का मैं उत्तम रूप से आचरण करूंगा। संख्या पूर्वक प्रतिदिन जो मुझे हरिनाम करना है वो मैं दृढ़ता से करूंगा। गुरु वैष्णव की सेवा करूंगा, प्रतिदिन श्रीमद भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन अनुशीलन करूंगा। गोपी गीत है, वेणु गीत है, भ्रमर गीत है, युगल गीत है, इनका प्रतिदिन पाठ करूंगा, और कोई रसिक वैष्णव मिले तो जी जान लगा के उनकी सेवा करूंगा। और जहां जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने उनकी नित्य लीलाएं की है उन स्थानों पर जाकर वैसे ही आपलबित हृदय से भगवान से प्रार्थना करके लालसामयी स्तोत्रों का पाठ करूंगा, स्तुति करूंगा। ऐसा करने से श्री कृष्ण कहीं दूर नहीं है, वे निश्चित आपको दर्शन देंगे। यही भजन की विधि है। ब्रह्म संहिता के अंतिम श्लोकों में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को यही ज्ञान देते हैं। वे स्वयं बताते ऐसी उत्कंठा से यादृशी यादृशी भावना, जिसकी जिस प्रकार की भावना रहेगी तादृशी तादृशी लभते सिद्धि, उसी प्रकार की उसको सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये फल वाली के पास तो प्रखर उत्कंठा थी भगवत दर्शन की, और उसने संकल्प लिया कि जब तक लाला के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जाऊंगी ही नहीं, और बस घूमने लगी फिर नंद भवन के आसपास, आगे पीछे, और बोलती थी फल ले लो, पके हुए फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो, और ये कर रही थी, और साथ में भगवत चिंतन शुरू था, उसके कारण धीरे धीरे वो फल लेने की बजाय वो बोलने लगी गोविंद ले लो, माधव ले लो, केशव ले लो, दामोदर ले लो, वो इतनी भगवत भावना भावित हो गए, फिर भी देखा भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। तो फिर नंद महल के बाहर ही अपना कपड़ा फैला के बैठ गई वहां पे, और पूरा उसने ठान ली थी, संकल्प भी किया था कि जब तक लाला के दर्शन नहीं होंगे आज यहां से उठूंगी ही नहीं। और बस दिल्ली के पास ही बैठ गई। तो भगवान तो सबके हृदय में निवास करते, उन्होंने उस फल वाले की वो उस उत्कंठता को देखा, और फिर भगवान उठ के आ गए, मैया की गोद में बैठे थे, उठ के आ गए, और आते आते वहां पे थोड़े अनाज पड़े हुए थे, अनाज अपने हाथ में पकड़ लिए और आ गए दहलीज के बाहर। दहलीज के बाहर आकर उस फल वाली के झोली में वो सारे अनाज के दाने डाल दिए, क्योंकि जब एक तो छोटा सा हाथ था और आते आते पकड़ भी नहीं पा रहे, तो बहुत सारे दाने तो वैसे ही जमीन पे गिर गए, और जो भी हाथ में कुछ गिने चुने चार पांच दाने बचे थे वो फल वाली की झोली में डाल दिए। और फल वाली ने जैसे ही देखा लाला सामने खड़ा है, तो बेचारी तो ठगी रह गई, मानो इस चित चोर ने उसका चित ही चुरा लिया, और बोले चल फल दे मुझे। तो उसकी आंखें भर आई और कहने लगी, लाला एक बार मुझे मां कह देना। तो लाला ने इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा है, और उसने बोला कि एक बार मेरी गोदी में आ जा और मुझे एक बार मां कह दे। और आपको तो मालूम है छलम छलता मसमी, सबको छलने में तो ये माहिर रहते हैं, नौटंकीबाज है एक नंबर के। बस इधर उधर देखा कोई नहीं देख रहा है, करके झट से उसकी गोद में बैठे, उसके हाथ को पकड़ा, वो मेरी मैया मुझे फल दे दे के, और फट से उठ के खड़े हो गए। बस वो तो बेचारी ठगी रह गई, और उसने लाला के अंजलि में जितने फल समा सके उतने भर दिए, और कन्हैया फल लेकर आंगन में बैठी माता यशोदा के आंचल में रख दी। मैया ने पूछा, लाला फल कहां से मिले? तो लाला ने इशारा करके बताया, उधर से। उसने बोला, उधर को दिल्ली के बाहर बैठी है, उसके पास से लेके आए। तो मैया बहुत आनंदित हो गई, बोली मेरा लाला कितना चतुर है, देखो उसने हमें अच्छी तरह से देखा है कि हम क्या क्या करते हैं। जब भी कोई हमारे कोई कुछ बेचने के लिए आता है तो हम थोड़ा सा अनाज लेके जाते हैं और उसको देकर उससे लेके आते हैं, तो आज ये भी अनाज उठा के लेके गया। और तो भगवान अपने आचरण से दिखाते हैं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जनः सयत् प्रमाणम करुते लोकस तदनुवर्तते, कि बच्चे अपने माँ बाप को देख के सीखते हैं, इसलिए माँ बाप का आचरण अगर शुद्ध हो तो बच्चों का आचरण शुद्ध रहेगा। कई बार हम कहते हैं कि हमारा बच्चा शैतान है तो आपकी औलाद ना, अगर वो शैतान है तो आप उसके माँ बाप है, तो आप सोचो आपके बारे में क्या है, क्योंकि जैसा व्यवहार आप करोगे वैसा ही व्यवहार बच्चे करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि वही देख रहे हैं, वो वही आपसे ही सीख रहे सारी चीजें, इसलिए बच्चों के सामने उचित व्यवहार करना चाहिए। भगवत लीला में हमें कई प्रकार के संदेश मिलते हैं, अगर हमारे कान आंख खुले हो और मस्तिष्क जग रहा हो तो, नहीं तो कई बार हम सोए रहते हैं, कथा चलती रहती है कानों पे, लेकिन यहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें ध्यान से कथा को सुनना चाहिए। तो मैया ने फिर वो फल सबको बांट दिए, लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि फल कम ही नहीं हो रहे, सबको फल मिल गए, और वो जो फल वाले थी भगवान श्री कृष्ण वहां से चले जाने के बाद उसको होश ही नहीं रहे, ऐसे लग रहा था मानो कि उसका चित्त श्री कृष्ण चुरा लिए हो। वही बैठी के बैठी रह गई, तब एक गोपी वहां से जा रही थी, उसने थोड़ा सा उसको झकझोरा, तब उसको चेतना आई, वह फल की टोकरी अपने सर पे रख के यमुना की ओर चल पड़ी, और चल रही थी चलते चलते जब यमुना के निकट पहुंची तो उसको लगा कि टोकरी थोड़ी सी भारी हो गई है, वजन लग रहा है उसका। तो उसने टोकरी नीचे ली और देखा कि टोकरी तो रत्नों से भरी पड़ी है। तो इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? अगर दिलो जान से अगर हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो आप सोचिए उसके प्रतिसाद में भगवान आपको क्या देंगे। अरे हम तो दो हाथों से देंगे, और लेकिन वे कैसे? अगर वे देना चाहे तो आप सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिम विश्वतो वृत्त अत्यतिष्ठत्तशांगुलम। अरे जिनके सैकड़ों हाथ है सैकड़ों पैर है, अगर वो आपको देना चाहेंगे तो लेने के लिए आपके पास है कुछ? मराठी में एक गीत है कि देनार्याचे हाथ हजारों दुबड़ी माजी जोड़ी। वो जो देने वाला है ना उसके हजारों हाथ है, लेकिन मेरे पास तो फटी हुई मैं झोली लेके घूम रहा हूं, कितना समा पाऊंगा उसमें। लेकिन जिनका मन कृष्ण चुरा लेते हैं उनकी दशा कैसी होती है? इसका बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक में किया है। वहां पे कहते हैं एवं व्रता स्व प्रिया नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हस्त्यत् तरोदितरोति गायन्ति उन्मादवत नृत्यते लोकबाह्यः। अरे जिनके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है, यानी जिनका चित्त भगवान चुरा लेते हैं, वो क्या करते हैं फिर? नाम संकीर्तन में उनको इतना अनुराग और प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि उनका चित्त द्रवित हो जाता है और वे साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगते हैं, कभी फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं, कभी उच्च स्वर में भगवान को पुकारने लगते हैं, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गुणगान करते हैं, और एवं कभी कभी उनको रिझाने के लिए नृत्य भी करते हैं। ये स्थिति होती है भगवत भक्तों की, जिनके हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है, जिनके चित्त को ये चित्त चोर चुरा लेता है, उनकी ये अवस्था हो जाती है। दशम स्कंद के 14वें अध्याय में जो ब्रह्मा जी ने सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की है, उसमें से एक प्रार्थना में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आप कैसे उरुण हो जाओगे इन व्रजवासियों के ऋण से, कैसे मुक्त हो जाओगे? ऐसा कौन सा ऋण है जो उन्होंने भगवान के ऊपर लाद दिया है? अरे भगवान तो उनके प्रेम के कारण इतने वशीभूत हो जाते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। व्रज में अगर कोई मिथ्या रूप से भी अगर भगवान के प्रति प्रेम दिखा देता है तो भगवान उसको सच्चा प्रेम मार लेते हैं, और हमारे पास बहुत बड़ा उदाहरण है उसका। अरे केवल वंचनामय मातृवेश धारण करने के कारण गोलोक में जिसको धात्री की गति प्रदान की भगवान ने, उस पूतना को देखो आप, जो अपने स्तरों पे कालकूट विष लगा के भगवान को मारने आई थी। केवल वही नहीं, उसके सारे परिवार वाले भी आ गए थे। अघ है, बक है, केशी है, ये सारे उसके अगासुर बकासुर, ये सारे उसके परिवार वाले तो थे, सबका भगवान ने उद्धार किया। अरे सुदामा विप्र मुट्ठी पर पोहा लेके आया उनको, तो वैकुंठ का ऐश्वर्य उसको प्रदान किया उन्होंने। तो सर्वस्व देने वाले जो व्रजवासी है उनको भगवान क्या देंगे? क्या आप कल्पना कर पा सकते हैं उसकी? इसीलिए चतुर्मुख ब्रह्मा जी कहते हैं येषां घोषनिवासिनामुत भवान् किं देवरातीतनाश्चेतो विश्वफलात् फलम् त्वदपरम् कुत्राप्ययन्मुह्यते स्वद्वेषादीव पुतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धाम् अर्थसुरत प्रिया आत्मतनय प्राणाशयास्त्वत्कृते। ये जो अंतिम पद है इस श्लोक का, अंतिम चरण जो है, जिसमें कहा है कि यद धाम अर्थ सुरत प्रिय आत्म तनय प्राण, सब कुछ जो आपके ऊपर निछावर कर लेते हैं, जो आपके चरणों में समर्पित कर लेते हैं, उनके लिए आप क्या करोगे? अरे भगवान, देवता देवारातीत, आप देवताओं के द्वारा आराध्य हो। इन व्रजवासियों ने जो आपकी सेवा की है उसके लिए आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल स्वरूप तो आप ही हो, आपसे बढ़कर तो कोई फल है नहीं। और यही सोचकर मेरा चित्त मोहित हो जाता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहां पर, आप उन्हें अपना स्वरूप देकर भी उरुण नहीं हो सकते, क्योंकि आपका स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों आघासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया है, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय में महान क्रूर थी, फिर जिन्होंने अपने घर धन ज्वान स्वजन परिजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित किया है, जिनका सब कुछ ही आपके लिए है, उन व्रजवासियों को भी वही देकर आप कैसे उरण हो सकते हैं? तो उनसे तो उरण नहीं हो सकते, लेकिन उनको आनंद तो दे सकते। इसलिए भगवान व्रज में अलग अलग अति सुंदर लीलाएं करते रहते हैं, ताकि इस लीलाओं के द्वारा इन ब्रजवासियों को उस आनंद सरोवर में निमज्जित कर देते। और भगवान सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, अनादि है, सबके आदि है, अघटित घटना पटियसी है, असम ऊर्ध्व स्वयं भगवान है, लेकिन ब्रज में अपने भक्तों के भक्ति द्वारा ही पूरे वशीभूत है। चारों कुमार, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद जी, उद्धव जी, यादवगण, सभी में भक्ति है, लेकिन वैसी भक्ति भगवान को वशीभूत नहीं करती, जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। भगवान की जो लीलाएं हैं, वे अपने भक्तों के प्रति जो उनका निस्सीम प्रेम है, उस प्रेम के कारण वो पूरी तरह से उनके वशीभूत हो जाते हैं। और खास करके गोपियों के तो वो पूरी तरह से वशीभूत है, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है, वही उनको पूरी तरह से वशीभूत कर लेती है अपने। इसीलिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में स्वयं शिवजी बताते हैं, वे कहते हैं अनंग रंग मंगलम प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सविभ्रमं सुसभ्रमं दृगंतवान पातनै निरंतरं वशीकृतं प्रतीतनंदनंदने कदा करिष्यसि ह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। प्रेम कीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग के बाकी भ्रुकुटी करके आश्चर्य प्रकट करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा से श्री नंदनंदन को निरंतर वशीभूत करने वाली है सर्वेश्वरी राधिका। और ऐसी राधिका मुझे कब अपनी कृपा कटाक्ष प्रदान करेगी? भगवान जितने गोपियों के वशीभूत है उतने और किसी के नहीं है वे, क्योंकि गोपियां उन्हें नाच एवं सभी कलाएं सिखाती है। इसलिए ब्रज की भाषा में कहा जाता है प्रिय को नचवत सिखवती प्यारी मान गुमान लकुटी लिए ठारी डरपत कुंज बिहारी। डर के कुंज में बिहारी जी रहते हैं, क्यों? क्योंकि श्रीमती जी बार बार अलग अलग प्रकार का मान करती है और नाच नचवाती है लाला को। तो ऐसी जो लीलाएं हैं जो स्वयं भगवान अपने भक्तों के द्वारा इतने वशीभूत हो जाते हैं, जैसे कहा जाता है, आपने सुना होगा रसखान के बारे में। एक अगर आप गोकुल जाएंगे, गोकुल महावन, तो मेरे ख्याल से आप जब उखलबंद लीला का जहां पे स्थान है उस स्थान से आगे आप ब्रह्मांड घाट की तरफ जाते हैं तो उल्टे हाथ में एक मेरे ख्याल से हाँ उल्टे हाथ में ही एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहां, वहीं पे रसखान जी की समाधि है। रसखान इतने हालांकि म्लेच्छ शरीर था उनका, लेकिन भगवान के प्रति इतना प्रेम था उनको और उनके पद बहुत सुंदर है। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन और लीला वैचित्र्य वर्णन उन्होंने उसमें किया है। तो एक अपने पद में कहते हुए कि छचिया भर छाच पर हरि को नचावे, व्रजरमणिया जो है चुल्लू भर छाच के लिए श्री हरि को नचाती है। एक बार औरंगजेब अपने सेवकों को बता के उनको रसखान जी को अपने दरबार में बुला लिया और बोला तो काफिरों के देवता का कैसे गुणगान करता है, वो इस्लाम का प्रचार करता था ना। तो उसने बोला कि इस इस्लाम के बारे में कुछ बोल नहीं तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो उर्दू में लाम यानी जो घुंघराले बाल है ना उसको लाम कहते हैं उर्दू में। तो रसखान जैसे चैतन्य चैतन्य कहा जाता है कि कृष्ण भक्त तो बड़ा चतुर। अब कृष्ण जिसके उपासक जो जिनका उपास्य ही बड़ा चतुर है तो उसके उपासक भी चतुर ही रहेंगे ना। तो रसखान भी चतुर थे तो उन्होंने एक सुंदर सा पद गाया। वे बोले कि घुंघराले बाल है मेरे घनश्याम के, काफिर है वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। औरंगजेब तो बहुत खुश हो गया, बोला जो बंदे इस्लाम के नहीं है वे काफिर है, इसने तो बहुत बढ़िया कहा। तो लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि घुंघराले बाल है मेरे घनश्याम के, मेरा जो घनश्याम है भगवान श्री कृष्ण जो है जिनका वर्ण मेघ सुंदर नव मेघ श्याम सुंदर जो उनका वर्ण है घनश्याम वर्ण है उनके घुंघराले बाल है। और वे कहते हैं आगे कि काफिर है वो जो बंदे नहीं इस्लाम के, यानी इस घुंघराले बाल वाले के जो बंदे नहीं है, उपासक नहीं है, वे सारे काफिर है। तो सारे मुसलमानों को उन्होंने काफिर बना दिया। तो ऐसे रसखान वे स्वयं कहते हैं यहां पे कि भगवान की अपने भक्तों के ऊपर जो निर्भरता है, जो पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर है, जो उनके पूरी तरह से वश में है, उसका वर्णन कहते हैं। मैं फिर से ये पद बोलता हूं कि छचिया भर छाच पर हरि को नचाए, चुल्लू भर छाच के लिए हरि को नचारे। एक बार हुआ क्या, लाल की लीलाएं देखो, ये ब्रज की लीलाएं कितनी मधुर है। अरे इन मधुर लीलाओं को देखने के लिए साक्षात शिवजी भी अपना कैलाश छोड़ के ब्रज में चले आते हैं। आ गए एक बार ब्रज में और नंद भवन के सामने आके अलग निरंजन करके हो गए खड़े। मैया आके देखी, देखा तो बहुत विचित्र वेश, व्याघ्र चर्म चम्र व्याघांबर उन्होंने परिधान किया हुआ है, डमरू बजा रहे है, हाथ में त्रिशूल है, पूरा भस्म लगाया हुआ है शरीर पे, और बोल रहे मैया तेरे लाला के दर्शन करने आया हूं। मैया बोली अरे मैं बूढ़ी, तुझे देख के डर रही हो तो मेरा लाला तो और डर जाएगा, तुझे कुछ भिक्षा चाहिए तो ये ले ले और चल निकल यहां से। तो मैया ने भिक्षा के लिए कुछ अनाज लाए थे, तो बोले नहीं मैया, ये तेरी जो भिक्षा जो है ना, मुझे इनकी आवश्यक नहीं है, ये तेरा आटा दाल पटांबर झोरी खाने पीने की आवश्यकता मुझे नहीं है। तो मैया ने बोला अरे जो लेना है ले ले, लेकिन ये डमरू मत बजाने, तो मेरा लाला सोया उठ जाएगा, वो उसकी नींद टूट जाएगी। शंकर जी बोले अरे भोरी मैया, मुझे तेरा आटा दाल पटांबर झोरी खाने पीने रहने सोने की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, मैं तो तेरे लाला का एक बार दर्शन करने आया हूं, बस मुझे यही भिक्षा चाहिए। तो मैया बोली हैं, अरे मोए बूढ़ी को तू तेरो स्वरूप देखकर डर लग रहे हो, मेरो लाला अति सुकुमार है, वो तेरो रूप देख डर जाएगो, मैं तोये नहीं दिखाऊंगी। और बस मैया घर के अंदर चली गई। और देवादिदेव शंकर जी भी कब, वो क्या मानने वाले हैं, उन्होंने द्वार के समय ही धुनी रमा दी, बैठ गए वहां पे और मन ही मन में बोले जब तेरो लाल बड़ो होगो बाहर खेलने आवेगो तभी तेरे लाला का दर्शन करूंगो, अब तो बिना दर्शन किए लौटूंगो नहीं। जिस स्थान पर वे बैठे थे आज भी वह स्थान योगिया कुंड करके विख्यात है। तो जब मैया ने घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि लाला बड़े जोर जोर से रो रहा है और सब कुछ किया चुप ही नहीं हो रहा है। तो मैया ने अपने सहेलियों से परामर्श किया कि अब क्या किया जाए। तो एक प्रौढ़ गोपी बोली मुझे तो लगता है वो कोई साधारण योगी नहीं है जो तेरे दरवाजे पे बैठा हुआ है, और वो भी दूर कैलाश से आया हुआ है। मैं तो सोचती हूं कि तू लाला को एक बार उसके पास लेके जा, दर्शन करवा दे। तो यशोदा मैया ने भी देखा कि अभी कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, तो उसने एक काले सूप में लाला को काले वस्त्र पे सुला के, काले वस्त्र में लपेट के, लाला के चेहरे पे थोड़ा सा काला तिलक लगा के, आंखों में काजल लगा के वो लेके गए। क्यों ये सब क्यों किया जाता है? आजकल की माताओं को लज्जा आती है कि अपने बालकों के मस्तक पे कोई टीका लगाए, स्वयं भी टीका नहीं लगाती, उनको किस बात की शर्म आती है मालूम नहीं, शायद कपड़ों को सूट नहीं होता करके। कई बार तो मेरी बच्ची ही मुझे बता देती है कि आपा ये टी शर्ट के ऊपर बिंदी वगैरह दिखाई नहीं देता। लेकिन ये लोगों के समझ में नहीं आता कि ये सारे हमारे प्राचीन संस्कार हैं, बच्चों के ऊपर इनके कारण बुरी नजर नहीं लगती है। आजकल हम देखते हैं फिर ये डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर के पास जाओ, घूमते रहते हैं, लेकिन ये साधारण चीजें हैं। ये कज्जल जो है, ये जो भी निगेटिविटी है, निगेटिव एनर्जी है, काली जादू है, इसका आपके शरीर पे प्रभाव नहीं होता, इसलिए वो काला टीका लगाते हैं। और यहां पे ब्रह्मांड के नायक को मैया स्वयं काला तिलक लगी। आप बताओ, यद विभेति स्वयं है, जिनको देख के भय भी डर जाता है, उनको किस चीज का भय? लेकिन आप हम के हम आप और हम सबके लिए ये बताया जाता है, ये करना चाहिए हमें। आप कितने भी पढ़े लिखे मूर्ख हो, जीवन में डर तो रहेगा ही। अगर डरों से मुक्त होना है, भय से मुक्त होना है, तो इन चीजों का अवलंबन करना चाहिए। तो मैया ने लगा दिया काला टीका और लाला को लेके आ गई सामने। और बस जैसे ही योगी राज ने लाला को देखा, लाला का रोना छुप, लाला हंसने लगा जोर जोर से। और मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले अरे तो अजब है, लाला इसको देख के कैसे शांत हो गया। तो योगीराज ने कहा, मैया मैं पास ही धुनी रमाऊंगा, यदि तुम्हारे लाला को नजर लगे तो मुझको बुलवा लेना, मैं नून और राई के साथ मंत्र से झाड़ दूंगा, तेरा लाला स्वस्थ हो जाएगा। अतएव जब जब लाला रोता था, मैया योगिया स्थान से योगी को बुलावा लेती थी। एक ब्रज का सुंदर गीत है इसके बारे में, उसमें कहते हैं, योगी चलो नंद भवन में, यशोमती मैया तुम्हें बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, तई पैराई नून करावे। तो देखिए, अगर बच्चा कभी शाम को रोता है कई बाहर जाने के आने के बाद, तो समझ लेना उसको नजर लगी है। और क्या करना है फिर, तई पई राई नून करावे, थोड़ा सा नमक और राई ले लो, बच्चे के ऊपर उतार के उसको फेंक दो घर के बाहर। और वह गरबा निकले, यशोदा मैया के घर पे योगी राज को शिवजी को बुलाया जाता था। और फिर कहते हैं, रह रह योगी नंद भवन में, व्रज में वास सदा तू कीजो, जब जब वाको लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। इसलिए आज भी नंद भवन में नंदीश्वर महादेव बैठे हुए हैं, वहां पे लाला की नजर उतारने। और इस प्रकार योगी राज का यानी भगवान शिव का भी जन्म सफल हो गया। एक बार हुआ क्या, जैसे हर बालक सोने से पहले कोई ना कुछ कथा सुन लेता है, ये शुरुआत अभी की नहीं, पहले से है, तो लाला को भी मैया सुलाने से पहले कथा बताया करती थी। और जब कथा बताया करती तो लाला भी बीच में हूं करके माँ को बता देता था कि मैं सुन रहा हूं करके। तो मैया ने एक बार कथा बताई और कहा, एक राजा था, फिर श्री कृष्ण बोले, उसका नाम दशरथ था, उसके चार पुत्र थे। कुछ बड़े होने पर विश्वामित्र मुनि उन्हें यज्ञ की रक्षा हेतु ले गए। तो श्री कृष्ण ने कहा, और यज्ञ रक्षा के बाद वे विश्वामित्र के साथ मिथिला चले गए। और वहां पे महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति इस धनुष के ऊपर उसके प्रत्यंच लगाएगा, उसके साथ माता सीता का विवाह हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, फिर दूर दूर के राजा वहां पे आए, सभी हार गए। अंत में भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा, सीता के साथ उनका विवाह हुआ। और फिर सुनते सुनते लाला कर देते। और माता अगर थोड़ा सा उत्कंठ, अगर माता थोड़ा सा देर करती थी बोलने के लिए, एक वाक्य खत्म होके दूसरा वाक्य शुरू होने के लिए जब थोड़ा सा विलंब हो जाता था तो बीच में ही लाला उठ के बोलता, अरे मैया मैया फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो मैया फिर से कहने लगती कि पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जी फिर वन चले गए। वन में गए तो फिर वहां पे मारीच आया एक मृग का रूप लेकर, फिर रावण माता सीता का हरण करके लेके गया। जैसे ही लाला ने सुना, इतने सुनते ही लाला में राम जी का आवेश आया, पलंग से कूद कर झट से बोले, लक्ष्मण मेरा धनुष लेकर आओ। और इसी का वर्णन करते हुए श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ऐसे लंब देकर जब भगवान उठे तो ऐसे भाव में विभावित जो श्री कृष्ण है, मैं उनको वंदन करता हूं। तो लाला ही है, हर रोज कुछ ना कुछ तो मस्ती करनी है। एक बार हुआ यूं कि मैया लाला को कुछ खिलौने देकर बिठा दिए और फिर अपना दधी मथने का कार्य कर रही थी। रात्रि का समय था और तब देखा लाला ने कि एक मटके में पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब गिरा हुआ है। वास्तव में हम देखते हैं ना कि सामान्य रूप से जब माखन बन जाता है दधी के बर्तन में दधी को मथने के पश्चात, तो उस माखन को उठा के एक पानी में भरे हुए मटके में डाला जाता है ताकि वो जो भी कुछ बचा कुचा छास या दही लगा हो वो निकल जाए और माखन जो पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो उसी मटके के अंदर माखन के बाजू में लाला ने चांद का प्रतिबिंब देखा, चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा और फिर जिद करने लगा मैया को, मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ये जो चंद्र जो है ना ये मुझे खिलौना चाहिए। तो मैया ने फिर क्या किया, उसमें से माखन निकाला और लाला के हाथ में थमा दिया। लाला माखन खाने में रम गया, फिर से उसका ध्यान गया, देखा अरे लल मैया ने मेरे को ठगा, ये तो चंद्र है नहीं, ये तो मखा माखन है और चंद्र तो उसमें ही है। तो बोले मैया मुझे तो वापस ये चंद्रमा चाहिए। तो मैया ने लाला को समझाया, अरे लाला ये चंद्रमा के ऊपर तो विष लगा हुआ है, देखो उसके ऊपर काले काले धब्बे है, वो विष है। तो बोले लाला बोला, अरे मैया उसके ऊपर कैसे विष लग गया। तो मैया ने उसको कहा कि ये कब बाहर आया, जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो उसमें से ये चंद्रमा निकल आया और आते आते उसके ऊपर थोड़ा सा जो मंथन करने में सबसे पहले जो विष आया था वो भी उसके ऊपर थोड़ा सा चिपक गया है। तो क्या तुम्हें वो विष भी चाहिए उसके साथ। तो मैया ने इस प्रकार से बोलने के बाद लाला को तो डर लग गया, बोला नहीं 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 नहीं, भला इसके साथ कौन खेलेगा, इसके ऊपर तो विष लगा हुआ। और लाला डर गया। बस आप सोचिए कि यद बिभेति स्वयं भयम्, जिनको देखने के पश्चात स्वयं भय भी भय खा जाता है वो इन छोटी छोटी बातों से डर रहे हैं। और ये उनका डरना भी ब्रजवासियों को आनंद दे रहा है। और इसीलिए यहां पे कहते हैं कि इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तं अख्यापयन्तं, इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तं अख्यापयन्तं, तदीय शितनेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे। जो इस प्रकार की सुंदर लीलाएं करके, खास करके इन बाल लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में नित्यकाल सरोवर कर देते हैं, निमज्जन करवाते हैं और वे यहां पे ऐश्वर्य ज्ञानमय जो भक्त है, जो भगवान को ऐश्वर्य भाव में भगवान की उपासना करते हैं, उनको वो बता रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तियों द्वारा ही जीत लिया गया हूं, उनके मैं पूरी तरह से वशीभूत हूं। ऐसा जो भाव प्रकाशित करते हैं उन दामोदर श्री कृष्ण को मैं शताव्रति सैकड़ों बार प्रणाम करता हूं, ऐसा सत्यव्रत मुनि यहां पे कहते हैं। तो बस आनंद लीजिए भगवान की इन सुंदर लीलाओं का, और जैसे सत्यव्रत मुनि ने भगवान को बार बार प्रणाम किया वैसा ही प्रणाम वंदन करके अपने जीवन को सार्थक कर लीजिए। बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय।